समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और हम उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट शगुन।
Hello and good afternoon. Welcome along listeners tuned to Parikrama on 100.1 FM. This is Shagun Chopra with Akarshita. Firstly, let me give you a brief description about the program. We're going to unpack loads of interesting stuff and pointers and read in between the lines in our segment Dateline India. We'll be providing you the latest news. Also, we have capsules, business updates and tributes and a lot more interesting stuff. So make sure listeners to stick around till the end. We will start off with the headlines.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में जल संचय जनभागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां जल संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर हमारा मूल्यांकन करेंगी।
Center says Navy, Air Force and NDRF teams mobilized to assist Andhra Pradesh and Telangana in rescue and relief efforts. Union Minister Shivraj Singh Chauhan conducts aerial survey of flood-affected areas at Khammam in Telangana.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत, ब्राजील और चीन यूक्रेन के साथ संभावित शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है।
In wrestling, Jyoti Berwal wins gold medal at Under-20 World Championships in Spain.
और पेरिस पैरालंपिक्स खेलों में भारतीय एथलीट कई स्पर्धाओं में पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे।
And now, in our segment Dateline India, we will be taking a look at the developments taking place at national or global level. And today, we will talk about Jal Sanchay Jan Bhagidari. This initiative is aimed at fulfilling the Prime Minister's resolve to make water conservation a national priority, and it's actually the need of the hour. Right, Akarshita?
Right.
Prime Minister Narendra Modi today virtually launched the Jal Sanchay Jan Bhagidari initiative in Gujarat. The Prime Minister expressed concerns over the flood situation in Gujarat and Andhra Pradesh, and he also said that, and I'm quoting him, "I have never seen so much rains in Gujarat in the past. Some other parts of the country are also reeling under flood situations." Now focusing on the objectives and aims of the Jal Sanchay Jan Bhagidari initiative, let me enumerate the aims and the objectives of this particular initiative. Number one, it's to mobilize citizens, local bodies, industries and stakeholders in Gujarat. Number two, it is to implement rainwater harvesting structures on a large scale. Number three, serve as a model for other states to emulate. Number four, promote sustainable water management practices. Number five, enhance water security across the country.
भारत में जनभागीदारी और जन आंदोलन से जन संरक्षण और प्रकृति संरक्षण का अनूठा अभियान चल रहा है। इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व पर जोर देते हुए जल संरक्षण करना है और ये समग्र समाज और समग्र सरकार के दृष्टिकोण से संचालित है। जल संरक्षण केवल नीतियों का नहीं बल्कि सामाजिक निष्ठा का भी विषय है। जागरूक जनमानस, जन भागीदारी और जन आंदोलन, ये इस अभियान की बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण हमारे लिए नए शब्द नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम उस संस्कृति के लोग हैं जहाँ जल को ईश्वर का रूप माना गया है, नदियों को देवी माना गया है और सरोवरों, कुंडों और देवालयों का दर्जा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सरदार सरोवर बांध को पूरा करने की चुनौती ली थी और कई चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद गुजरात में जल संरक्षण पहल की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने पर्यावरण के लिए देशवासियों से एक पेड़ माँ के नाम लगाने की अपील की है। जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो भूजल का स्तर बढ़ता है। बीते कुछ सप्ताह में एक पेड़ माँ के नाम पर देश में करोड़ों पेड़ लगाए जा चुके हैं। ऐसे कितने ही अभियान और संकल्प हैं जो 140 करोड़ देशवासियों की भागीदारी से आज जन आंदोलन बनते जा रहे हैं। सरकार पूरे समाज के विकास के लिए काम कर रही है। बीते 10 वर्षों में सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं को देखा जाए तो जल संबंधी मुद्दों पर कई वर्जनाओं को तोड़ा गया है। सरकार के प्रयासों से देश के 75% घरों में नल से साफ पानी पहुंच रहा है। और शगुन अगर देखा जाए तो जो आज की सिचुएशंस हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है, कितने पेड़ पालो कम हो गए हैं आसपास में, और वो कहते हैं ना कि हम अपने शहर
फॉरेस्ट कवर इज डिप्लीटिंग, क्लाइमेट चेंज आल्सो इट्स लीडिंग टू दैट।
और कभी भी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो हम तुरंत पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो सुकून, वो शांति और वो इन्वायरमेंट जो होता है ना, कि हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है जो कि हमारे शहरों में नहीं है। तो इतना ज्यादा डिप्लीशन हो रहा है इन्वायरमेंट का, इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, तो उसके लिए ये जो पहल है ये बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब हम वाटर हार्वेस्ट करेंगे तो हम पृथ्वी से जो जल का दोहन करते हैं बहुत ज्यादा, उसमें कहीं ना कहीं से कमी आएगी। और जब हम एक पेड़ माँ के नाम, जो हमारे देश में अभियान चल रहा है, जहां तक हो सके हम अपने सभी श्रोताओं से ये निवेदन करते हैं कि कभी कोई त्योहार हो, उत्सव हो, एक पेड़ अपने माँ के नाम जरूर लगाएं। इससे आप पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और अपने आसपास के वातावरण को और सुरक्षित बना सकते हैं और एक खुली हवा में सांस ले सकते हैं।
यू कैन आल्सो यू नो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दी फॉर एग्जाम्पल, यू कैन इवन इफ नॉट योर इवन इफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव विच यू टॉक्ड अबाउट एक पेड़ माँ के नाम, इवन इफ यू रिजोल्व टू प्लांट अ ट्री ऑन योर बर्थडे, दैट कैन ऑल्सो बी यू नो बिगन विद, जस्ट टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट, बिकॉज द क्लाइमेट चेंज एंड द एक्सेसिव हीटिंग ऑफ आवर प्लानट, दिस इज लीडिंग टू बेसिकली द डिफॉरेस्टेशन, द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर, which can also lead, which in turn leads to the water conservation and water depletion and water even the
और देखा जाए तो हमारे कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पीने के पानी की बहुत समस्या रहती है। ऐसे दक्षिण के कई राज्य हैं। जरूरी नहीं कि हमारे राज्य में पानी की कमी नहीं है तो और कई राज्यों में नहीं होगी। तो अगर हम अपने राज्य में पानी को बचाएंगे, वाटर हार्वेस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों को भी फायदा होगा और वाटर डिप्लीशन, जो एक भूजल का स्तर है, वो भी बना रहेगा।
राइट, let's now focus on this current edition of the Jal Shakti Abhiyan, Catch the Rain. This campaign emphasizes women's leadership in water management under the theme Nari Shakti Se Jal Shakti, which is women's power to water power. This focus aims to, number one, empower women in decision-making roles related to water management, number two, recognize and utilize women's unique perspectives and also the experiences in conservation efforts. Number three, really important, promote gender equality in environmental stewardship.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। शगुन, अगर आपकी स्थानीय जो भाषा है, बोली है, आपको उसी में शिक्षा दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी हम छोटे थे, जब हम नर्सरी या कहीं में स्कूल गए थे पहली बार, तो जो लैंग्वेज जो हमारे सामने आती है, एक भाषा आती है, हमको बड़ा वो लगता है कि हमको अलग लैंग्वेज में, अलग भाषा में अपनी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, वो जो बिल्कुल अलग होता है जिस भाषा में,
कंप्लीटली अपोजिट टू द लैंग्वेज व्हिच वी आर सराउंडेड बाय।
जब एक छोटा बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो जिस भाषा में उसके माता पिता उससे बात करते हैं, उसके समाज के लोग उससे बात करते हैं, उस भाषा में उसको शिक्षा नहीं मिलती तो उसको बहुत कठिनाइयां होती हैं शुरू शुरू में उस भाषा पर पकड़ बनाने की। लेकिन अगर आपके ही राज्य में आपकी ही जो भाषा है, स्थानीय बोली है, उसमें ही शिक्षा दी जाए तो कितनी बड़ी बात है ना।
Well, Akarshita, it will be fairly easy to understand all those concepts and different history and those particular subjects which we couldn't understand that well.
तो ऐसी ही एक कहानी लेकर आए हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के आदिवासी जिलों में कक्षा 1 से 4 तक की शिक्षा स्थानीय बोली भाषा में उपलब्ध कराने का इरादे से काम किया जा रहा है। इससे प्राथमिक स्तर से ही विद्यार्थियों की अध्ययन क्षमता में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों की अध्ययन यात्रा बोली भाषा से मानक भाषा तक होगी। इसके लिए पुणे स्थित जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ने धारावाहिक पुस्तकों का 12 स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया है। हमारे पुणे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
हालांकि आदिवासी समाज का सारा लेन देन बोली भाषा में होता है, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा मराठी में होती है। एक बच्चा पहले दिन स्कूल में प्रवेश करते ही वहां की प्रमाणित भाषा सुनकर हैरान हो जाता है, कारण वे उसकी बोलचाल की भाषा नहीं होती है। जाने अनजाने वे शिक्षा से दूर होने लगते हैं, ये सोचकर कि ये शिक्षा उनके लिए नहीं है। केवल बोली भाषा की कठिनाई के कारण शिक्षा में आने वाले अंतर को दूर करने के लिए आदिवासियों को उनकी अपनी बोली के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य से आदिवासी विकास विभाग पहली से चौथी कक्षा की किताबों को 12 स्थानीय बोलियों में रूपांतरित कर रहा है। राज्य के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में कोलामी, माड़िया, गोंडी, वारली जैसी भाषाओं का उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को मराठी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इससे आदिवासी विद्यार्थियों को शैक्षणिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति के छात्रों को उनकी बोली में शिक्षा के लिए महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 4 तक के लिए मराठी बाल भारती की किताबों को कोरकू, गोंडी, भील, मथवाड़ी, माउची, माड़िया, कोलामी, भील बसवे, भील भिलाऊ, वारली, कोकणा, कोकणी, पावरी और कातकरी बोलियों में अनुवादित किया जा रहा है। पुणे स्थित आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ने बाल भारती की पुस्तकों का अनुवाद कर उन्हें सरकारी आश्रम विद्यालयों को उपलब्ध कराया है। गढ़चिरौली जिले के हेमलकसा के स्कूल में बोली के माध्यम से शिक्षा का प्रयोग पहले ही लागू किया जा चुका है। इसके परिणाम उत्कृष्ट मिले हैं। इसके लिए शिक्षकों को पहले माड़िया भाषा की शिक्षा दी गई। बुलडाणा जिले में राइस फाउंडेशन के ऋषिकेश और हर्षदा खिलारे ने आदिवासी बोलियों और साहित्य का अध्ययन करके मौखिक संस्कृति का दस्तावेजीकरण किया है। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए भी पुस्तकें लिखी गई हैं। आशा है इन सभी प्रयासों से आदिवासियों को देश की मुख्य धारा में लाने का प्रयास और आसान हो जाएगा। परिक्रमा के लिए पुणे से मनोज क्षीरसागर।
Now listeners, taking you forward with the environmental conservation theme, trees and forests play a very crucial role in maintaining ecological balance and providing oxygen to human beings on the planet. In this context, the Andhra Pradesh government has launched the Van Mahotsavam program on 30th August with the intention of planting 1 crore saplings across the state. Our next report tells you more.
Trees and forests played a very crucial role in maintaining ecological balance and providing oxygen to human beings on the planet. In this context, Andhra Pradesh government has launched Vana Mahotsava program on August 30th with the intention of planting 1 crore saplings across the state. Addressing Vana Mahotsava program at Eco Park in Guntur, Chief Minister Nara Chandrababu Naidu said that the well-being of the people is our priority and that they have been aiming for 50% greenery across the state. And State Forest Minister Pawan Kalyan stated, protecting the environment is crucial for everyone, especially for future generations. There is no future without environmental protection. Planting saplings is as important as protecting greenery, which shields us from scorching heat waves in the summer. He has also said that government is planning to set up 50 urban parks across the state. The government has made it clear that everyone should make it a habit to grow and protect the plants. All educational institutions, universities, industries, paper mills, spiritual institutions, including government departments are actively participated in this program to make the planting of saplings as a celebration in every village, town and city. And also government organizes plantation drives at various levels in coming 3 months. To encourage people to plant trees, that to plant our indigenous plants instead of exotic plants. And methods should be adopted like planting more saplings in a smaller area. So everyone take it up as a social responsibility and participate in achieving 50% green cover in the state. This is Satyanarayana for Parikrama from Visakhapatnam.
And yes, Maharashtra is all set to celebrate the 10-day Ganesh Utsav beginning tomorrow. People from all strata of the society and devotees in lakhs of homes will ceremonially install the Ganesh idols for worshipping tomorrow on the occasion of Ganesh Chaturthi. Likewise, the famous public pandals in Mumbai, including Lal Bagcha Raja, Ganesh Chalicha Raja and GSP Mandal, are all ready to welcome lakhs of devotees amidst the traditional festivities. We have more from our correspondent.
In Maharashtra, lakhs of households and number of public Ganeshotsav mandals are putting their best foot forward to welcome their favorite god Shri Ganesh on his annual homecoming tomorrow on the auspicious day of Ganesh Chaturthi. Famous neighborhood markets in Mumbai suburban areas including Dadar, Parel, Thane, Mulund are witnessing festive spirit. The markets are filled with various materials of decorations, eco-friendly makhars to house Lord Ganesh idols, fresh flower garlands, essence and other puja materials. Sweet shops are preparing colorful sweets along with Bappa's favorite modaks. Like every year, clay idols and eco-friendly decorations assume significance among the devotees. The idols of Mumbai's famous Ganesh Galli, Lal Bagh, as well as GSP Seva Mandal, King Circle, are set ready to welcome lakhs of devotees visiting their pandals. City police and civic administration are also putting final touches to ensure security and traffic arrangements across the city. The festival of dynamism will continue for the next 10 days. Nivedita for Parikrama from Mumbai.
केरल में ओणम त्योहार की आज कोची के पास त्रिपुनिथुरा में अथा चामियम जुलूस के साथ रंगारंग शुरुआत हुई। हर वर्ष अथम दिवस पर आयोजित होने वाली सांस्कृतिक परेड ओणम त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। वहीं झारखंड के जामताड़ा जिले में प्रधानमंत्री जनमन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले गरीब जनजातीय परिवारों पर इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। जिले की उपायुक्त कुमुद सहाय बताती हैं कि जिले के सभी प्रखंड क्षेत्रों में बसने वाले आदिम जनजाति परिवारों को चरणबद्ध गीत संगीत एवं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
झारखंड के जामताड़ा जिले में प्रधानमंत्री जन मन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले गरीब जनजातीय परिवारों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। जिले की उपायुक्त कुमुद सहाय कहती हैं कि जिले के सभी प्रखंड क्षेत्रों में बसने वाले आदिम जनजाति परिवारों को चरणबद्ध गीत संगीत और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है।
नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। इन लोगों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। इन लोगों ने बताया कि टीकाकरण क्यों आवश्यक है। टीकाकरण के अभाव में एक गर्भवती महिला की मौत हो जाती है, तब गांव वालों को पता चलता है कि इसकी अहमियत क्या है, आवश्यकता क्या है। उसी तरह इन लोगों ने ये भी अपने नाटक के माध्यम से और गीतों के माध्यम से बताया कि पेयजल क्यों जरूरी है। हम नदी का जल को भी पेयजल नहीं कर सकते। हमें जो नल से जल आता है दैट इज वो अच्छा होता है, बेटर होता है।
जागरूकता अभियान का सार्थक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। उपायुक्त कहती हैं कि प्रधानमंत्री जन मन योजना का मुख्य उद्देश्य कमजोर जनजातीय परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देकर उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। यह अभियान पीवीटीजी परिवारों को व्यक्तिगत अधिकार और बुनियादी सुविधाओं से युक्त बस्तियों से परिपूर्ण करने के उद्देश्य से एक प्रयास है, जिससे आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके। अभियान अवधि के दौरान आधार कार्ड, सामुदायिक प्रमाण पत्र और जन धन खाते प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि ये आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अन्य योजनाओं के लिए बुनियादी आवश्यकताएं हैं। परिक्रमा के लिए रांची से मैं पूनम करकट्टा।
And now, listeners, we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
आज हम जानेंगे कि अंग्रेजों ने मराठा भूमि में कैसे पैर जमाए। हम शरद चंद्र बोस और विभाजन की यंत्रणा के बारे में भी बात करेंगे। अठारहवीं सदी के मध्य तक
मराठा साम्राज्य अंग्रेजों का सबसे प्रमुख विरोधी बन चुका था। अब अंग्रेज मराठा साम्राज्य को जीतना चाहते थे। जब पेशवा माधवराव की मृत्यु हुई तो रघुनाथ राव ने पेशवाई हासिल करने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी। 6 सितंबर 1774 को अंग्रेजों ने पुणे को पुनः जीतने में रघुनाथ राव की सहायता की, लेकिन अन्य मराठा शासकों के विरोध के कारण शीघ्र ही पेशवा को गद्दी से हटा दिया गया।
रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से फिर सहायता मांगी और मार्च 1775 में सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से अंग्रेजों ने सॉलसेट द्वीप और वसई किले पर नियंत्रण के बदले रघुनाथ राव की सहायता का वायदा किया। बाद में सूरत की संधि के कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सेना को अंग्रेजों और रघुनाथ राव की संयुक्त सेना से युद्ध करना पड़ा। इस तरह भारतीय राजाओं की आपसी लड़ाई की प्रवृत्ति के कारण ब्रिटिश साम्राज्य मजबूत होता गया।
आज शरद चंद्र बोस की जयंती भी है। उनका जन्म 6 सितंबर 1889 को ओडिशा में हुआ था। वे सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। 1911 में उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की और इंग्लैंड चले गए। महान नृपेंद्रनाथ सरकार के मार्गदर्शन में शरद चंद्र ने बैरिस्टर के रूप में बहुत प्रसिद्धि हासिल की। भारत वापस आकर उन्होंने सफल वकालत आरंभ की, लेकिन बाद में वो वकालत छोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए।
तत्कालीन भारत के गृह विभाग की रिपोर्ट में उन्हें अपने भाई सुभाष चंद्र बोस की शक्ति और कलकत्ता में सविनय अवज्ञा आंदोलन का फाइनेंसर बताया गया था। शरद चंद्र बोस ने 1929 में समाचार एजेंसी की स्थापना की, जिसका नाम था ओरिएंट प्रेस एजेंसी। 1940 के दशक में उन्होंने द नेशन अखबार निकालना शुरू किया।
कुछ वर्ष बाद शरद चंद्र राजनीति में भी शामिल रहे और विभिन्न पद संभाले। उनका विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं है जो नैतिक रूप से गलत हो और राजनीतिक रूप से सही। यही जीवन भर उनका मार्गदर्शक सिद्धांत बना रहा।
शरद चंद्र बोस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल और पंजाब के विभाजन का विरोध किया। वे माउंटबेटन योजना के प्रकाशन से पहले और बाद में भी विभाजन का लगातार विरोध करते रहे। इसी मुद्दे पर उन्होंने जनवरी 1947 में कांग्रेस छोड़ दी और फरवरी 1947 में विरोध आंदोलन शुरू किया। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होते ही शरद चंद ने भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और सीलोन के क्षेत्रीय संगठन की हिमायत की। वे एशिया के दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों की एकता के भी समर्थक थे।
यही नहीं, अगस्त 1947 में शरद चंद्र बोस ने सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी बनाई और 1949 में यूनाइटेड सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, जिसने देश की सभी सोशलिस्ट ताकतों को एक मंच पर आने का आह्वान किया। शरद चंद्र बोस सच्चे राष्ट्रवादी थे। वे आखिर तक विभिन्न तरीकों से विभाजन रोकने के प्रयास करते रहे और विभाजन के हर संभव विकल्प भी तलाशते रहे।
उन्नीस में भारत के विभाजन के बाद 4 वर्ष में ही लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। स्थिति का प्रबंधन करने के लिए 6 सितंबर 1947 को भारत सरकार ने शरणार्थियों को राहत और पुनर्वास के लिए नया मंत्रालय बनाया।
लेकिन विभाजन के जख्म आसानी से नहीं भरे जा सकते। वो दर्द अब भी महसूस होता है। भारत के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि अब से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छल नहीं करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का तय होना ऐसे लोगों को हर भारतवासी की तरफ से आदर पूर्वक श्रद्धांजलि है।
आज भारत की अधिसंख्या जनसंख्या ऐसी है जिसका जन्म भारत के रक्त रंजित विभाजन के बाद हुआ है, लेकिन उन्हें वो इतिहास याद रखना चाहिए जब मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी विभीषिका में लाखों लोगों की जान चली गई और लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा।
Let's delve into the world of business now. India's equity benchmark indices extended their losing streaks for third straight session following the uncertainties before the US Fed meeting this month. In the early morning deals, the frontline indices opened downside with the 50-stock index Nifty shedding around 400 points and Sensex logging loss of more than 800 points. At close, the Sensex declined 1,017 points or 1.24% to settle at 81,184 and Nifty 50 dropped 276 points or 1.1% at 24,869.
और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस. आज सरोद वादक अलाउद्दीन खां की पुण्यतिथि है. उन्होंने भारतीय संगीत के सबसे बड़े घरानों में से एक मेहर घराने की भी नींव रखी थी. उस्ताद अली अकबर खां भारत में शास्त्रीय संगीत परंपरा के पितामह कहे जाने वाले अलाउद्दीन खां साहब के बेटे हैं. उन्हीं के संरक्षण में मेहर घराने की विरासत संभालते हुए अली अकबर खां ने अपने पिता से संगीत सीखा. अलाउद्दीन खां ने पंडित रविशंकर और अल्लाह रखा खां को भी शास्त्रीय संगीत सिखाया था. सितार और सरोद की मेली से बैंजो सितार, बंदूक की नालियों से नल तरंग और उनकी मौलिक रचनाओं में भी शामिल है. इन्होंने संगीत का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया. उन्हें पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. आइए सुनते हैं उनका ये सरोद वादन.
Today, we're also remembering Mario Prats, Italian critic of art and literature and a scholar of English literature. It's his birth anniversary today. His best-known book, The Romantic Agony, was a comprehensive survey of the decadent themes that characterized European authors of the late 18th and 19th centuries. Today, we're also remembering Thomas Richard Fogerty, musician. He's best known as the rhythm guitarist for Creedence Clearwater Revival. He signed his first record deal at age 18 as frontman for a short-lived rock group called Spiderweb and the Insects. By the early 60s, he had formed a group with his younger brother John plus bassist Stu Cook and drummer Doug Clifford. And for you listeners, we have the song Proud Mary to listen to.
आज हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक राकेश रोशन का जन्मदिन है. इनके पिता मशहूर संगीतकार रोशन हैं. राकेश रोशन ने 1970 से 90 के दशक के आखिरी वर्षों तक बतौर अभिनेता कई फिल्मों में काम किया. राकेश रोशन ने 1987 से बतौर निर्देशक सिने प्रेमियों के लिए एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई जिनमें अधिकांश फिल्मों के नाम के से शुरू होते थे. खुद गर्ज, खून भरी मांग, किशन कन्हैया, करण अर्जुन, कहो ना प्यार है, कोई मिल गया कृष आदि. आइए सुनते हैं राकेश रोशन की फिल्म का ये गीत.
सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से.
Today, it's the birthday of George Roger Waters, singer-songwriter and English musician. In 1965, he co-founded the rock band Pink Floyd as the bassist. And listeners, for you, we have the song Comfortably Numb to listen to.
Hello, hello, is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home?
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और शकुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की. नमस्कार.